अष्टादश पुराण कथा सार के क्रम में आज शनिवार पंचम दिवस के कथा के प्रसंग में संत राम पीठ के नवम पीठाधीश्वर गुरुवर्य के चरण में नमन करते हुए आज की पावनी कथा जो संक्षेप रूप में कल मार्कंडेय ऋषि के चरित्र पर प्रकाश डाला गया था, मार्कंडेय जी से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो पूछते हैं, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तूने हमारी इतनी स्तुति की, हमने तुम्हें सप्तकल्प पांत जीने का वरदान दिया, तुम्हें चाहिए क्या? कहा, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, जो संत राम मंदिर में लिखा है कि येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेत् प्राज्ञः तदेव ईश्वर पूजनम्, तदेव ईश्वर पूजनम्। जिस किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का भी देही मतलब आत्मा का संतोष प्रदान करना, यही मैं भी चाहता हूं। कारण क्या है कि हर जगह परमात्मा है, और हर जगह जब मैं परमात्मा को देखता हूं तो परमात्मा को कहीं से भी कष्ट न हो, यह जो सिद्धांत है मैं इसी का पोषण करना चाहता हूं। तो मुझे तो आपने वरदान दे दिया, लेकिन अब आप मेरे अतिरिक्त जो प्राणी हैं उनको मुझ जैसा आनंद मिलता रहे इसके लिए आप कुछ करें। विशेष करके कलयुग में लोग एक दूसरे से भेद बुद्धि रखेंगे, अलग अलग संप्रदाय का परिवर्तन करेंगे, हरि और हर में भेद देखा जाएगा, लोग आपस में झगड़ेंगे, मैं शैव हूं मैं वैष्णव हूं। तो यह भेद न हो, अभेद बुद्धि रहे, तो इसके लिए आप कुछ करें। उन्होंने कहा, मुनिवर यहां पर एक पुरुषोत्तम तीर्थ स्थापित हो जाएगा, वह पुरुषोत्तम जहां हरि और हर दोनों ही रहते हों, दोनों में अभेद संबंध है, क्योंकि शिवस्य हृदये विष्णु, विष्णु हो हृदये शिव, उभयोरंतरम नास्ति। शिव के हृदय में भगवान विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव, इसलिए यह पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर, जो पुरुषोत्तम शिव रूप में यहां प्रतिष्ठित हो जाएंगे और लोग आपको मार्कंडेय जी के द्वारा पूजित मानेंगे, तो वह मंदिर दक्षिण भारत में है और वहीं पर पुनः भुवनेश्वर लिंग की स्थापना हुई, और उस भुवनेश्वर लिंग की आराधना करके मार्कंडेय जी तीनों लोक में पूजित हो गए और उनको वरदान दिया कि भाई आपको हमेशा स्मरण किया जाएगा। वही हम लोग आज भी अपने जन्मदिन के अवसर पर मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम देही में नरपुंगव। हे मार्कंडेय, आप महाभाग्यशाली है, महाभाग्यवानों में श्रेष्ठ है, सात कल्पों तक आप जीवित रहने वाले हैं, मुझे आयु प्रदान करिए, और यदि आयु मिले तो रोग शरीर में न हो, क्योंकि यदि शरीर में रोग हो जाएगा तो हम जीना हमारा हराम हो जाएगा। आयु और आरोग्य, आयु भी हो आरोग्य हो, और यदि धन न हो ऐश्वर्य न हो तो भी जीवन बेकार है, क्योंकि निर्धन के मित्र कोई नहीं होता है। तो इसलिए आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देही में नरपुंगव, ये नरपुंगव नरश्रेष्ठ मुझे आयु दीजिए और आरोग्य दीजिए और ऐश्वर्य दीजिए, इस प्रकार की कल्पना हम अपने जन्मदिन के दिन मारकंडे जी से मांगते, क्योंकि भला आयु किसको भी न प्रिय होगा, सबको आयु प्रिय है, सबको ऐश्वर्य प्रिय है। धनाशा जीविताशा च जीर्यतोपी न जीर्यति, धन की आशा और आयु की आशा वृद्ध होने के बाद भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। इसलिए मार्कंडे जी के द्वारा भुवनेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई और उसी भुवनेश्वर में शिव की भी पूजा होती है और विष्णु की भी पूजा होती है, वहाँ देवादिदेव भगवान शिव और विष्णु, और वहीं पर एक सुंदर सरोवर तीर्थ भी बनाया गया, जो तालाब बनाया गया, तालाब का नाम पड़ा मार्कंडे हरद, जिसको हम यहाँ गुजराती में तलावड़ी कहते हैं। भगवान के लिए स्नान के निमित्त तालाब होना चाहिए, उनका सर होना चाहिए, कुप होना चाहिए, जिससे जल भगवान को अर्पित किया जाए, भगवान के लिए बावली बनवाया जाए, भगवान के लिए वाटिका बनवाया जाए, पुष्प वाटिका, जैसे संतराम महाराज की वहाँ है डेरी में, उसी तरह से पुष्प वाटिका और सरोवर होना चाहिए। इसको पूर्त कहते हैं, यज्ञ को इष्ट कहते हैं, और जो तालाब इत्यादि बनवाते हैं, लोकोपकार करते हैं, पाठशाला खुलवाते हैं, इसे हम पूर्त कहते हैं। तो पूर्त करने वाला व्यक्ति भी जो है कई हजार वर्षों तक स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। कारण क्या है कि नर रूप नारायण का वह सेवक बन जाता है, नर रूप में नारायण का वह सेवक बन जाता है। तो इस प्रकार से मार्कंडे के द्वारा पूजित शिव मंदिर, वटवृक्ष मंदिर, श्री कृष्ण एवं बलभद्र एवं सुभद्रा जी का भी तीर्थ बनाया गया, और वह पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बन गया, जो उसे हम पंच तीर्थ कहते हैं। पंच तीर्थ के सेवन का कलयुग में बहुत महात्म्य है, वहां जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, संसार सागरे मग्नम पाप ग्रस्त मचेतनम त्राहिमाम भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। हे त्रिपुर नाम के असुर के संहर्ता भगवान शिव, मैं संसार में ग्रस्त हूँ, पाप से ग्रस्त हूँ, मुझे जो है बचाओ। क्यों तो नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय च, आप सभी प्रकार के पापों के हरण करने वाले हो। स्नानम करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम, आपने तो सारे देवता और दैत्यों के अघ को भी विष रूप में आपने पान कर लिया, समुद्र मंथन के समय निकला विष आपने हलाहल पान किया है, इसलिए आप हमारे पाप को पी जाइए, ऐसा रद में स्नान करने के पहले प्रार्थना का विधान बतलाया है वहां। और शिव जी के पूजा का ऐसा विधान बतलाया है पुराणों में शास्त्रों में कि शिव की पूजा से प्रायः सबकी पूजा हो जाती है। शिव के द्वार शिवलिंग पर विष्णु की पूजा, देवी की पूजा, अन्य भी जितने देव हैं सब शिवलिंग में वास करते हैं। जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि लियते च जगत जस्मिन, जिसमें जगत जाके लीन हो जाता है और वहीं से पुनः उत्पन्न होता है, वह लिंग है, और लिंग स्वरूप में हमारा शरीर भी है, क्योंकि हमारे मन में हमारे आत्मा के अंदर ही सारे भाव उत्पन्न होते हैं, सुख दुख ये सब हमारे मन के कल्पित वृत्तियां हैं। तो यह शरीर भी लिंग है, क्योंकि इसके अंतर्गत सुख और दुख उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे अंदर जो भाव है, जब हम सो जाते हैं तो शयन कर जाते हैं, जब हम जागृत होते हैं तो मनोभाव हमारे अंदर आते हैं। इसलिए कहा है कि यह संसार का जो मोह है वही हमें दिखाई देता है। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार में पत्नी, बाल, बच्चे, घर, संपत्ति, धन, इसमें हमारी चित्त वृत्तियां लगी रहती है, हम उसमें भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन 24 घंटे में भी यदि गृहस्थ आश्रम में एक बार भगवान का स्मरण हो जाए तो उसे कहते हैं वह गृहस्थ आश्रम सफल है। एक कथा आती है, नारद जी को अपने भक्ति पर बहुत ज्यादा अभिमान हुआ था। उन्होंने कहा, भगवान मैं दिन भर नारायण नारायण जपते रहता हूँ, आपने कभी एक भी बार अपने मुख से नहीं कहा कि नारद तुम हमारे भक्त हो। और वो जो गृहस्थ उठ करके एक बार नारायण नाम ले लेता है तो आप कहते हो कि वो बहुत बड़ा भक्त है। कहा भगवान ने कि नारद जी, ये एक दीपक है और इसमें तेल भरा है, आप जरा तीनों लोक की परिक्रमा करके एक बार आ जाओ, आपको घूमने का बहुत अभ्यास है। नारद जी महाराज घूमना प्रारंभ किए, उनका ध्यान रहा कि भाई तेल गिरने न पाए। तीनों लोक का भ्रमण करते करते देखते देखते आए भगवान के पास, पूछा नारद आ गए? तो हाँ, तेल का दीपक सुरक्षित है, गिरा नहीं ना? कहा महाराज जी कहीं नहीं गिरा है, आप देखिए तो। नारायण नाम कितनी बार लिया? तो अरे राम राम, ये तो मैं भूल ही गया। तो मतलब क्या है कि यह संसार प्रपंच है और इस प्रपंच में गृहस्थ आश्रम और प्रपंच है। गृह कारज ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में रह करके गृह कार्य जो है ना बहुत कठिन है, उसमें वह नाना प्रकार के जंजालों से भरा हुआ है। जाल, जाल कहते हैं उसे, जाल। जाल क्या होता है? मछली मारने वाले वो फेंक देते हैं और जल में से अंदर से वो निकाल लेता है, पास से वो बूंद करके रखते हैं, उसमें से कोई चीज बहक करके नहीं जाती है। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में रह करके काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। इसलिए वह जो है गृह क्या है, जाल है, जंजाल है, जमजाल। जम मतलब जंगम, चलता हुआ जाल है। गृहस्थ आश्रम बीतते जाएगा लेकिन पास में अपने बांधे रहता है, इसलिए उसका नाम जंजाल कहा। तो इस जंजाल से मुक्ति के लिए ही मार्कंडे जी ने कहा कि यह पुरुषोत्तम शिव होंगे, इनके जो दर्शन करेंगे, इनका जो स्पर्श करेगा, इन पर जो जल चढ़ाएगा, और वो सभी पापों से मुक्त होगा और भगवान का नाम संकीर्तन करेगा। और मत्स्य फिर आगे जा करके अष्टाक्षर मंत्र का महात्म्य बताया है। और अष्टाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, उसके जप करने की बात बतलाई है। उसके जप से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। आज मैं गया था, इंटरनेशनल सेमिनार था, वहां शिव योग की बातें हो रही थी कि वैज्ञानिक लोग जो खादर जो डालते हैं वैज्ञानिक, उससे धरती की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जा रही है, और फसलों पर हम जो दवाइयां डालते हैं उससे फसलों की क्षमता नष्ट हो रही है, उपाय क्या है उसका? तो कहा कि आप उस पे जो सब्जी इत्यादि है, आप उस पे जो जहर छीट रहे हो कीटाणु को मरने के लिए, तो जहर कभी जहर पैदा नहीं करता है, जहर हमेशा जहर पैदा ही करेगा, जहर के द्वारा कभी सब्जी नहीं उगेगी। इसलिए उसका न प्रयोग करके मंत्र का प्रयोग बदलाया, जो हमारे पुराणों की तरफ पुनः संस्कृत साहित्य की तरफ पुनः प्रकृति की तरफ पुनः लौटने की शिक्षा है। वैज्ञानिकों को यही शिक्षा दी जा रही है। 15 देश के प्रतिनिधि वहां आए थे और चर्चा में यही निकला कि नहीं, हमें मंत्र शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने यह बतलाया कि जहां पर कोई सृष्टि नहीं हो पाती थी, भूमि एकदम सुसुप्त बन गई थी, जहर बन गई थी, वहां कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा था, वहां उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया 21 दिन तक। जब मंत्र का प्रयोग किया तो देखा वहां से केंचुए छोटे 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 निकल गए, तो जहां कुछ नहीं होता था 21 दिन में इतना अंतर आया। मंत्र है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो स्वाभाविक चिकित्सा है, वह बड़ी ही उपकारिणी है। और वहां जब खेती की गई मंत्र के द्वारा, तो कृषकों का जो फसल है वो दोगुना से तीन गुना बढ़ गई। तो यह जो स्थिति है, यह स्वाभाविक रूप से मंत्र के प्रयोग से व्यक्ति के आंतरिक चेतना के जागृत करने के प्रभाव से सामने वाले वस्तु में चेतना आती है। आप कहेंगे कैसे, हम जैसे आपको देखते हैं और नजरों से एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं और दोनों में एक चेतना का संचार हो जाता है, परस्पर एक दूसरे को देख करके खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को आंखों से देख के नाराज हो जाते हैं, ये कौन सी शक्ति है? यह हमारी और आपकी चेतना है। तो यदि हम तेजस्वी बनेंगे, हम अपने अंदर के चेतना शक्ति को जागृत करेंगे, तो हमारे में रहने वाली चेतना उस सामने वाली मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह मूर्ति पूजन का विज्ञान है। इसलिए आचार्यों को मूर्ति सब प्रतिष्ठा के समय में नेत्रोन्मीलन का विधान बतलाया गया, उसमें प्राण शक्ति की प्रतिष्ठा की बात कही गई है। हम जितने ही प्राणवान होंगे, हमारे सामने वाला उतना ही ऊर्जा लेकर के और वह सुखी हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के सन्निधान में जाने से जो हमारे पाप ताप संताप हैं, वहां जाकर के नष्ट हो जाते हैं, और उनके सामने पहुंचते ही हमें लगता है कि हम किसी ऐसे जगह पर आ गए। तो यह जो तेजस्विता है, इस तेजस्विता की मूल मंत्र अपने अंदर रहने वाली चेतना शक्ति को जागृत करना है। जब हम उस अंतर रहने वाली चेतना शक्ति को जागृत करेंगे, तो हम भी देवता के स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए तो भारतवर्ष में देवता आने के लिए तरसते रहते हैं। इसमें आया है गायन्ति देवा गीत काने। अब तक हम पाठ ही करते थे, समझते ही थे, लेकिन अब तक पुराण के वचन रूप में हमने इसको देखा। यह भारतवर्ष की जो महिमा है, वह सभी वर्षों से उत्कृष्ट बतलाया। उसमें यह भी कहा कि यही ऐसा देश है जहाँ नद है, नदियां हैं, तालाब है, पहाड़ है, मिट्टी है और वृक्ष है, जहाँ सबकी पूजा होती है। हम वृक्ष में भी पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, औदुम्बर के वृक्ष में दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य में देवता मानते हैं, पृथ्वी को समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। जिस देश में धरती को बचाने के लिए साक्षात भगवान शुकर का रूप धारण करते हो, गुंड का रूप धारण करते हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि वो उनकी पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। सुबह उठते ही उनके प्रति कृतज्ञता चालू हो जाती है, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, आप हमारी जो दृष्टता है वह क्षमा करना। जहाँ गंगा पूजी जाती है जल के रूप में, ऐसे गंगा अवतरण आदि की कथा है, नाना प्रकार के तीर्थों की कथाएं हैं, और दशाश्वमेध यज्ञ वाराणसी में हुआ, उस दशाश्वमेध का भी महात्म वर्णन है। फिर वहीं पर पिशाच मोचन तीर्थ है, जो लोग दुर्गति से मरते हैं उनकी पिशाच योनि होती है, उन पिशाचों के लिए वहाँ पिंड दान के द्वारा पिशाच मोचन तीर्थ पर तरण हो जाता है, यह भी वर्णन है। यदि इसको विशेष किसी प्रकार से यदि किसी को जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हमसे मिलेगा, हम उसको बतला देंगे। फिर अस्सी और वरुणा दो प्रकार की नदियां हैं, वाराणसी तीर्थ का वर्णन किया, वरुणा और अस्सी दोनों के बीच में बसे हुए भाग को हम वाराणसी कहते हैं। उस वाराणसी में मरने वाले को